लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि समाज से उन्हें सुरक्षा मिले और उनकी पीड़ाओं पर ध्यान दिया जाए। आमीन।
नमस्कार श्रोताओ, आज के प्रसारण विषय हैं कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओ, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र फ्रतेल्ली तुत्ती हम सभी भाई बहने हैं की चर्चा कर रहे हैं। यह विश्व प्रेरितिक पत्र हमें भ्रातृत्व और सामाजिक बंधुत्व में प्रवेश करने का निमंत्रण देता है। संत पापा फ्रांसिस की चाह यही है कि हम मानव सम्मान को पहचान प्रदान करते हुए वैश्विक भ्रातृत्व के लिए एक सार्वभौमिक आकांक्षा को पुनर्जन्म दें। हम सभी नर और नारी के रूप में भ्रातृत्व के भाव उत्पन्न कर सकते हैं। श्रोताओ, हम फ्रतेल्ली तुत्ती के तीसरे अध्याय एक खुले विश्व की परिकल्पना और खोज की चर्चा करते हुए अपने पिछले प्रसारण के अंत में कहा कि प्रेम जो शहर और देश की सीमाओं के पार जाने की क्षमता रखता है, उसे हम सामाजिक मित्रता की संज्ञा दे सकते हैं। समाज में सच्ची सामाजिक मित्रता हमें अपने को सच्चे रूप में पूरे विश्व के लिए खुला रखने के योग्य बनाती है। हम कुछ लोगों में एक झूठी वैश्विकतावाद को पाते हैं, जो विदेशों का दौरा करते क्योंकि वे अपने ही लोगों को सहन करने या उन्हें प्रेम करने में असक्षम होते हैं। वे जो अपने लोगों को ही हीन भावना से देखते हैं, समाज को प्रथम दर्जे और द्वितीय दर्जे में बांट देते हैं, जहां कुछ लोग अपने में अधिक से अधिक अधिकारों का लाभ उठाते, वहीं कुछ को कम से ही संतुष्ट रहना होता है। संत पापा कहते हैं कि मैं निश्चित रूप में छोटे समुदाय के एक अधिकार और अमूर्त वैश्वीकरण या सुनियोजित योजना को बढ़ावा नहीं दे रहा हूं, जो नाम मात्र का एक आदर्श प्रस्तुत करता है। इस तरह का वैश्वीकरण वास्तव में विवेकपूर्ण तरीके से एक आयामी एक रूपता को प्रस्तुत करता और एकता के छिछलेपन में दूसरी विभिन्नताओं तथा रीतियों को मिटा देता है। यदि इस तरह का वैश्वीकरण हम सबों में एक तरह की एकरूपता लाती, हमें एक करती, तो वह वैश्वीकरण व्यक्ति के अनोखे उपहारों और हर किसी के मूल्य को नाश कर देती है। यह झूठी वैश्विकता विश्व के विभिन्न रंगों, उसकी सुंदरता और अंततः उसकी मानवता को खत्म कर देती है। भविष्य मोनोक्रोम एक रंगा नहीं है। यदि हम अपने में साहसी हैं, तो हम इस पर चिंतन कर सकते हैं। हर व्यक्ति अपनी विभिन्नता में हमारे लिए क्या दे सकता है। एक रूपता के बिना हमारे मानव परिवार को एक साथ मिलकर एकता और शांति में रहने हेतु सीखने की जरूरत है।
मिल मिल कर हम गाएंगे आज प्रभु के गाने, प्रेम भरे ये तराने।
श्रोताओ, संत पापा कहते हैं कि हम भले समारी के दृष्टांत पर पुनः लौटकर आए, क्योंकि यह हमारे लिए बहुत सारी बातों का जिक्र करता है। एक घायल व्यक्ति राह के किनारे पड़ा है, लोग वहां से गुजर रहे हैं, लेकिन वे अपने हृदय की पुकार को एक पड़ोसी की भांति सुनने हेतु ध्यान नहीं देते हैं। उन्हें अपने कार्यों को पूरा करने की धुन सवार है। उन्हें समाज के सामने सम्मान की चिंता है, समाज में अपने व्यावसायिक जीवन का फिक्र है। वे अपने को वर्तमान समाज के लिए महत्वपूर्ण समझते और उस समाज में अपनी सही भूमिका अदा करने की बात को लेकर चिंतित हैं। राह के किनारे घायल परित्यक्त व्यक्ति उनके लिए एक भटकाव सा लगता है, उनके कार्यों में उनके लिए एक रोड़ा सा प्रतीत होता है, वह उनके लिए किसी भी कीमत में महत्वपूर्ण नहीं लगता है, वह उनके लिए और उनके भविष्य के लिए कुछ भी नहीं है, वह असम्मानित और एकदम महत्वहीन है। वही भला समारी इन सारे संकीर्ण विचारों से परे जाता है, वह स्वयं अपने को उन सभी स्वरूपों में कहीं उपयुक्त नहीं पाता है, वह अपने में एक अपरिचित है जिसका समाज में कोई अस्तित्व नहीं है, वह अपने में सभी तरह के बंधनों और सामाजिक स्तरों से मुक्त है, वह अपने जीवन की परियोजनाओं में परिवर्तन लाने के योग्य है, वह अपनी जीवन यात्रा को बदल सकता है, और इस भांति वह अचानक ही उस घायल व्यक्ति की जिसे उसकी सहायता की जरूरत है सेवा में लग जाता है। संत पापा फ्रांसिस हम सबों से चिंतन हेतु सवाल करते हैं कि वर्तमान परिस्थिति में उस कहानी की क्या प्रतिक्रिया होगी। एक ऐसी दुनिया जो निरंतर अपने में उन्नति और सामाजिक समूहों से संयुक्त रहने की चाह रखती है, जो उन्हें दूसरों से अलग करते हुए एक विशिष्ट पहचान प्रदान करती है, यह उन्हें किस तरह प्रभावित करेगा जो अपने को इस तरह व्यवस्थित करते हैं, जो उन्हें दूसरे अपरिचितों की उपस्थिति से पृथक कर देता है, क्योंकि वे अपनी बंद पहचान और अपनी आत्म संदर्भित रचनाओं को प्रभावित होता अनुभव करते हैं। ऐसी परिस्थिति में पड़ोसियों के रूप में हम अपने कार्यों को भी अपने से अलग पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में केवल वही एक पड़ोसी के रूप में देखा जाता है जो उनके उद्देश्यों और जरूरतों की मांगों को पूरा करता है। यहाँ हम पड़ोसी के संपूर्ण अर्थ को खोता हुआ पाते हैं। यहाँ हम केवल संयोजनों सहभागिताओं को देखते हैं जो विशेष हितों तक ही सीमित है।
मिल मिल कर हम गाएंगे आज प्रभु के गाने, प्रेम भरे ये तराने।
श्रोताओ, भ्रातृत्व की उत्पत्ति केवल व्यक्तियों के व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं के आधार पर नहीं होती है और न ही एक निश्चित प्रशासनिक समानता के आधार पर ही। भ्रातृत्व हमें इससे भी वृहद मांग करती है जो हमें स्वतंत्रता और समानता को विस्तृत करती है। क्या होता है जब हम वार्ता और आपसी आदान प्रदान के मूल्यों को पहचान प्रदान किए बिना आत्मबोध विहीन भ्रातृत्व को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ऐसी स्थिति में स्वतंत्रता हमारे लिए और कुछ नहीं सिर्फ एक परिस्थिति बन जाती है जहां हम अपनी मर्जी के अनुरूप जैसे चाहते वैसे ही चीजों का चुनाव करते और जीवन यापन करते हैं। कहा जाए तो हम चीजों को अपने में जमा करते और उनका दुरुपयोग करते हैं। स्वतंत्रता की यह छिछली समझ हमें इसकी समृद्धि तक नहीं ले जाती जो हम सबों को प्रेम करने के योग्य बनाती है। न ही एकता को हम अमूर्त घोषणा सब नर और नारी अपने में बराबर हैं के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि यह हमारे लिए आत्मबोध के कारण फलहित होती है जहां हम सतर्कता में भ्रातृत्व के भाव को बढ़ावा देते हैं। वे जो अपने में संयोजनाओं या संघों तक ही सीमित होते बंद विश्व का निर्माण करते हैं। उन संरचनाओं के अंदर उन लोगों का अस्तित्व क्या है जो किसी भी संघ से ताल्लुकात नहीं रखते, यद्यपि वे अपने में एक अच्छा जीवन और परिवार की चाह रखते हैं। श्रोताओ, व्यक्तिगतवाद हमें अधिक स्वतंत्र, अधिक बराबर और अधिक भ्रातृत्व में नहीं बनाता है। कुछ एक व्यक्तिगत लोगों की चाह पूरे मानव परिवार की भलाई नहीं कर सकती है और ना ही यह हमें बहुत सारी बुराइयों से बचा सकती है जो कि वैश्विकता की दुनिया में बढ़ती जा रही है। व्यक्तिगतवाद की रूढ़िवादिता अपने में एक वायरस के समान है जिसे खत्म करना बहुत कठिन है क्योंकि यह अपने में चालाक है। यह हमें इस बात पर विश्वास करने को प्रेरित करती है कि हमारी महत्वाकांक्षा पर कोई भी लगाम नहीं होना चाहिए, मानो अपनी बड़ी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने और अपने लिए सुरक्षात्मक तंत्र तैयार करने में हम सबों की भलाई चाहते हों। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवार ये कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र फ्रतेल्ली तुत्ती हम सभी भाई बहने हैं पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
पावन सरगम गाएंगे, गीत गुन गुन सुनाएंगे, जन जन गाएंगे, खुशियां मनाएंगे, गीत प्रभु को चढ़ाएंगे। गाए मन भाई, गाए मन भाई, आज प्रभु के गाने प्रेम भरे ये तराने, हिल मिल कर हम गाएंगे आज प्रभु के गाने।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने दवा संग्रह के कार्य को प्रोत्साहन दिया है। उन्होंने 9 फरवरी के ट्वीट संदेश में कहा है, आज से 15 फरवरी तक दवा बैंक में दवा जमा करने का दिवस है। इन दिनों आप दवा खाना जाकर तथा दवा दान कर गरीबों की मदद कर सकते हैं। इस साल यह अधिक महत्वपूर्ण है ताकि सभी लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा हो सके। वैटिकन के लिए ब्रिटिश राजदूत सैली ऑक्सवर्दी ने परमधम पीठ के दूसरे राजदूतों के साथ संत पापा फ्रांसिस से चौथी और अंतिम बार मुलाकात की। उन्होंने वैटिकन रेडियो से बातें करते हुए संत पापा के संदेश एवं ग्रेट ब्रिटेन की आम चिंताओं पर प्रकाश डाला। सोमवार को संत पापा ने राजनयिकों को संबोधित किया, जिसमें संकट एक प्रमुख शब्द था जिसका जिक्र उन्होंने अपने भाषण में किया। वैटिकन के लिए ब्रिटिश राजदूत ने गौर किया कि संत पापा का भाषण पहले से कुछ भिन्न था। पहले के भाषणों में प्रायः वे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर जोर देते थे, जबकि इस साल पोप ने कई संकटों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जिन्होंने हमारे विश्व को प्रभावित किया है, खासकर स्वास्थ्य, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, राजनीति और मानवता के संकटों के रूप में। उन्होंने कहा, हालांकि भाषण थोड़ा अलग था, फिर भी संत पापा ने कई परिचित मुद्दों को सामने रखा जिनमें 2-3 नए मुद्दे भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि संत पापा ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करने, एक सरल राजनीतिक वातावरण बनाने और कानून के नियम का सम्मान करने की आवश्यकता पर जोर दिया। राजदूत ऑक्सवर्दी ने कहा कि ये सारी बातें यूके के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश राजदूत ने कहा, पोप की सारी चिंताओं को नहीं, फिर भी हम बहुत कुछ साझा करते हैं। उनमें से एक प्रमुख चिंता है जलवायु परिवर्तन। उन्होंने बतलाया कि इस साल यूके कोप 26 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जो ग्लासगो में इसी साल के नवंबर माह में आयोजित किया जाएगा। ऑक्सवर्दी ने बतलाया कि संत पापा ने जलवायु परिवर्तन मुद्दे पर बहुत अधिक जोर दिया और राजनयिकों का ध्यान उन कमजोर लोगों एवं छोटे द्वीपों की ओर खींचा जो सबसे अधिक इससे प्रभावित हो रहे हैं। ब्रिटिश राजदूत ऑक्सवर्दी के लिए राजदूत के रूप में 4 साल का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। उन्होंने बतलाया कि वैटिकन आने से पहले उन्होंने वैटिकन से जुड़े कई स्कैंडल के बारे समाचार पत्रों में पढ़ा था। उन्होंने कहा, यहाँ आकर मैंने वैटिकन के दूसरे पक्ष को देखा। इसमें बहुत सारे लोग हैं जो विश्व को बेहतर स्थान बनाने के प्रयास में लगे हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों के साथ एवं परमधम पीठ के साथ यूके से संबंधित मुद्दों पर कार्य करते हुए मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ। वैटिकन रेडियो की शुरुआत 90 वर्षों पहले हुई है, जो पूरे विश्व के लिए संत पापा की आवाज है। संत पापा पियो 11वें के अनुमोदन पर गुलेल्मो मार्कोनी द्वारा रूपरेखा तैयार करने और निर्माण करने के बाद रेडियो स्टेशन ने समाचार प्रसारित किए हैं, सुसमाचार की आशा प्रदान की है और यह पूरे विश्व के लिए संत पापा की आवाज बनी हुई है। इस वर्षगांठ के सम्मान में वैटिकन रेडियो एक नया वेबसाइट और एक नया वेब रेडियो जारी करने जा रहा है। आज वैटिकन रेडियो में कुल 41 भाषाएं हैं। वैटिकन रेडियो के प्रबंध संपादक मसिमिलियानो मनिकेत्ती ने कहा, हम हमारी 90वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जब कोविड-19 महामारी के कारण एक बड़े संकट ने पूरे मानवता को प्रभावित किया है। हमारा मिशन हमेशा यही रहा है कि कोई अकेला ना छूटे और सुसमाचार प्रचार, संत पापा की आवाज और सुसमाचार के प्रकाश में घटनाओं की व्याख्या की आशा प्रदान करना। अतः यह अवसर हमें पहले से कहीं अधिक चुनौती दे रहा है। उन्होंने बतलाया कि इसके साथ कई भाषाओं में टेलीविजन सेवा और रेडियो समीक्षा सेवा भी प्रदान किए जा रहे हैं। हमने नए कार्यक्रम, पॉडकास्ट, ऑडियो बुक आदि शुरू किए हैं ताकि विश्व के हर कोने तक पहुंचा जा सके। उन्होंने याद दिलाया कि संत पापा ने जोर देकर आग्रह किया है कि हम विश्व के सुदूर गांवों तक पहुंचें। लातिनी अमेरिका और करेबियाई कलीसिया के क्लामोर नेटवर्क ने मानव तस्करी के खिलाफ एक अभियान जारी किया है, जिसका शीर्षक है जीवन बिक्री की वस्तु नहीं है। 8 फरवरी को हर साल कैथोलिकों को प्रोत्साहन दिया जाता है कि इस वर्तमान परिस्थिति के प्रति जागरूकता लाने हेतु प्रार्थना सभा का आयोजन करें। इस तारीख को इसलिए चुना गया है क्योंकि इसी दिन संत जोसफिन बकीता का पर्व मनाया जाता है, जो सूडान की एक गुलाम लड़की थी। उन्हें कलीसिया द्वारा 2000 में संत घोषित किया गया और वे गुलामों के खिलाफ कलीसिया की प्रतिबद्धता की प्रतीक बन गयी। क्लामोर अभियान को रविवार को एक ऑनलाइन प्रार्थना सभा के दौरान जारी किया गया, जिसमें प्रतिभागियों को याद दिलाया गया कि यीशु हमें निमंत्रण देते हैं कि हम उनसे प्रचुर जीवन प्राप्त करने हेतु मानव जीवन के हर प्रकार के व्यवसायीकरण को बदलें। कार्यक्रम की शुरुआत लातिनी अमेरिका के कार्तिक धर्मध्यक्ष सम्मेलन के महासचिव महाधर्मध्यक्ष जोर्ज एद्वार्डो लोजानो ने की, जिन्होंने मानव तस्करी को एक अपराध कहा, जो मानव व्यक्ति के लिए अत्यंत शर्म की बात है और दिखाता है कि हम नीचता में किस हद तक नीचे जा सकते हैं। अर्जेंटीना के धर्माध्यक्ष ने तस्करों के चंगुल से बचने वालों की कठिनाइयों की याद की, जिन्हें मानसिक आघात से मुक्त होने की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा, कई लोग शर्म से अपने घरों या गांव वापस नहीं लौटते। अतः उन्होंने गौर किया कि नया अभियान और क्लामोर का कार्य उन्हें कलीसिया के समारितानी चेहरे को दिखाएगा। वह लोगों के साथ माँ के हृदय से पेश आएगा और उनकी अकथनीय पीड़ा में झुककर उन्हें सांत्वना देगा। क्लामोर के अध्यक्ष मेक्सिको के महाधर्माध्यक्ष गुस्तावो रोड्रिगेज वेगा ने कहा कि यद्यपि कलीसिया के अंदर और बाहर कई लोग और संस्था हैं जो आधुनिक प्लेग के प्रति सचेत हैं, किंतु कई लोग इससे अनदेखा करते और उदासीन बने रहते हैं। अतः उन्होंने क्लामोर के अभियान पर जोर दिया, जिसके द्वारा मानव तस्करी की वर्तमान स्थिति के बारे जागरूकता बढ़ेगी। मानव जीवन का अपना महत्व है और यह शारीरिक शक्ति, जवानी, शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ नहीं है। यह व्यक्ति के लिए आधारभूत साधन है, जिसके बिना उसका अस्तित्व नहीं है और न ही वह किसी दूसरी वस्तु का आनंद ले सकता है। उक्त बात स्पेन के कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के परिवार और जीवन की रक्षा विभाग के वेबसाइट पर कही गई है। 25 मार्च 2021 को जीवन दिवस मनाया जाएगा। उधर भारतीय कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन ने उत्तराखंड के ग्लेशियर आपदा पर दुख व्यक्त किया है और घटना में मारे गए या लापता हुए लोगों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।